आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये क्लास 10th के साइंस का 11th चैप्टर है और इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट हम लोग लास्ट क्लास में फिनिश कर चुके हैं। आज की क्लास में बेसिकली हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट और उसके बाद टिंडल इफेक्ट, उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि ब्लू कलर की स्काई क्यों अपीयर होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने ये भी बात कर ली थी कि रेड कलर को ही क्यों यूज़ करते हैं डेंजर सिग्नल्स के लिए। उसके बाद सनसेट और सनराइज के टाइम पर हम लोगों को स्काई जो है वो सन के आसपास का स्काई वो रेड क्यों अपीयर होता है, ये भी हमने बात की थी। एक्टिविटी 11.3 की थी जिससे हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप अच्छे से हुई थी कि हम समझ पाए कि सनसेट और सनराइज के टाइम पर जो स्काई है वो रेड क्यों अपीयर होता है। तो ये सारी बातें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर सीधा आ जाओ पेज नंबर 197 पर। तो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ह्यूमन आई के पास एक एबिलिटी होती है कि वो अपना फोकल लेंथ जो है उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकती है। इस उसको एडजस्ट करने की जो ये एबिलिटी है इसको एक नाम दिया गया है और ये नाम क्या है, तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था अबाउट अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन जो ह्यूमन आई के पास होती है कि वो वेरिएशन ला सकती है, एडजस्टमेंट कर सकती है फोकल लेंथ में, आईज की फोकल लेंथ में। सिलरी मसल्स जो है वो बेसिकली उसकी आईज की कर्वेचर जो है उसको वेरिएशन देने में मदद करती है जिससे कि फोकल लेंथ में वेरिएशन आता है। तो इसे पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं और फिनोमिना को अकोमोडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे अकोमोडेशन जो कि बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा है द ह्यूमन आई फॉर्म्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो आपने पढ़ा हुआ है आईज के बहुत अलग अलग सारे ऑर्गन्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, कुछ लेंस की तरह फंक्शन करते हैं, कुछ और ऑर्गन्स है जिनका फंक्शन अलग होता है, जिनमें से एक ऑर्गन ऐसा है जिसका फंक्शन है लाइट को डिटेक्ट करने का, क्योंकि उसके पास फोटो सेंसिटिव उसके अंदर फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है और ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल बेसिकली उस ऑर्गन के पास न्यूरॉन्स के रूप में होता है, तो फोटो सेंसिटिव न्यूरॉन्स होते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके बारे में हमने पढ़ा है जिसके पास फोटो सेंसिटिव न्यूरॉन्स होते हैं? आपको याद होगा आपने पढ़ा है अबाउट रेटिना, रेटिना जो ऑर्गन है इसी के ऊपर लाइट पड़ती है तो ये लाइट को डिटेक्ट कर पाता है क्योंकि इसके पास फोटो सेंसिटिव न्यूरॉन्स होते हैं और रेटिना ही लाइट को फिर लाइट की फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके न्यूरॉन्स में इसको ट्रांसफर कर देता है, फिर न्यूरॉन्स अल्टीमेटली इस सिग्नल को ब्रेन तक लेकर के जाते हैं। तो ये सारा आपको याद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी और आंसर है रेटिना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हमें बताया गया था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये किसे कहते हैं? ये नियर पॉइंट को कहते हैं। नियर पॉइंट क्या है? वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो उसकी क्लियर इमेज हमारी रेटिना पर फॉर्म हो जाएगी, तो उस मिनिमम डिस्टेंस को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। मतलब ऐसी मिनिमम डिस्टेंस जहां पर अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसकी और नॉर्मल अच्छी क्लियर इमेज बन जाएगी, तो डिस्टिंक्ट विजन होगा वो, तो इसीलिए इसको ये नाम देते हैं। ये नाम आपको याद रखना है कि इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अगर कहा जाए तो नियर पॉइंट के बारे में बात हो रही है और नियर पॉइंट की कितनी वैल्यू होती है? 25 सेंटीमीटर। कई बार आप लोगों को ऐसे ही बोल देंगे कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है, या फिर ये आपको कोई क्वेश्चन दे देंगे और उसमें बोलेंगे कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट कुछ और डिस्टेंस पर रखी है तो बताओ फोकल लेंथ क्या है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो टर्म है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ये बेसिकली नियर पॉइंट के लिए रेफर कर रहे हैं और इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ दी। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और अभी डिस्कस भी किया था जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि सीलरी मसल्स जो हैं वो मदद करते हैं आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, क्योंकि सीलरी मसल्स जो हैं वही आई लेंस की फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट में मदद करती हैं, अकोमोडेशन में मदद करती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर्स फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन, फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग। फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट जो पार्ट है उसमें बोला है डिस्टेंट विजन, सेकेंड पार्ट में बोला है नियर विजन। तो बेसिकली हम लोगों को जो पावर्स है लेंस की जो इस व्यक्ति ने यूज की है, इसकी दूर की रोशनी भी खराब है, पास की रोशनी भी खराब है। तो जो दूर की रोशनी खराब है, दूर की रोशनी को करेक्ट करने के लिए इनको जो चश्मा लगाया गया है वो -5.5 डायोप्टर्स का है, क्योंकि आपको पता है अगर दूर की रोशनी खराब होती है तो उसके लिए कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, तो इसीलिए पावर नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कॉनकेव लेंस जो इन्होंने यूज किया है उसकी पावर तो गिवन है, हमें फोकल लेंथ बताना है। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस जो इन्होंने यूज किया है अपनी पास की रोशनी खराब होने की वजह से, तो उसका भी आप लोगों को फोकल लेंथ बताना है। पावर आप लोगों को दोनों ही लेंसेज की गिवन है, तो आपको ध्यान होगा पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/F। यहाँ पर P जो है वो क्या है, पावर है, और F जो है वो है फोकल लेंथ। इनवर्स रिलेशन होता है पावर और फोकल लेंथ के बीच में। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि फर्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें डिस्टेंट विजन का फोकल लेंथ पूछा गया है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपको पावर गिवन है उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे, P = 1/F। तो F = 1/P इस तरीके से हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके आप लिख सकते हैं P = 1/F = F = 1/P। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पावर गिवन है तो आप लिखेंगे F = फर्स्ट पार्ट के लिए 1/-5.5। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे F = -10/55। तो F = -10/55। तो ये माइनस जो है इसे हम वैसे तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि अब फोकल लेंथ जो आएगी वो हमारी नेगेटिव में आएगी, तो वो तो हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने कॉनकेव लेंस यूज किया हुआ है। तो आप नेगेटिव ड्रॉप भी कर सकते हैं या फिर रख भी सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, F = -10/55। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा F की वैल्यू 0.18 मीटर। इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप लिख देंगे 18.18 सेंटीमीटर के आसपास की फोकल लेंथ है, वो भी नेगेटिव वैल्यू के साथ, क्योंकि ये एक कॉनकेव लेंस है। तो ये तो हमने बात कर ली फर्स्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपसे बोला है नियर विजन का भी आपको पावर गिवन है, फोकल लेंथ बताना है। तो नियर विजन के केस में जो करेक्टिव लेंस यूज करते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो इसीलिए पावर 1.5 प्लस में दी गई है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से वही फॉर्मूला यूज करना होगा, P = 1/F या फिर F = 1/P। अब आप P की जगह पे वैल्यू डाल दीजिए तो आपका जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा F = 1/1.5। इसे सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा F = 0.666 सेंटीमीटर। इसे आप चाहें तो इसे सेंटीमीटर में रहने दे सकते हैं, या फिर इसे आप सॉरी इसका आपको वैल्यू मिलेगा F = 0.666 मीटर। आप चाहें तो मीटर में रख सकते हैं या फिर आप इसे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपकी फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 66.6 सेंटीमीटर। तो आपको ये समझ में आ गया, आप लोगों को इसी तरीके से अगर पावर गिवन हो तो फोकल लेंथ पता लगानी होती है, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज करना होता है वो होता है P = 1/F। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। इसमें पूछा है द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो इसमें बताया गया है मायोपिक आई है, यानी कि एक लिमिटेड डिस्टेंस के आगे की चीजें ये व्यक्ति नहीं देख पाते हैं, तो यहाँ पर इनको मायोपिया की दिक्कत है, जिसके लिए हमें ये जो करेक्टिव लेंस देना होगा वो ऐसा होगा कि वो कॉनकेव लेंस होगा। तो इतना आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब यहाँ पर आपसे सिर्फ इतना ही नहीं पूछा है कि कौन सा लेंस होगा, नेचर तो पूछा ही है, साथ में पावर भी पूछी है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको यूजफुल होगा। तो इसको सीखने के लिए आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि मायोपिया के केस में हम कैसे पावर पता लगाते हैं और हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के केस में कैसे पता लगाते हैं पावर। तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। हम लोग 6th क्वेश्चन में अभी मायोपिया का पता लगाएंगे कि पावर किस तरीके से हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पर आपसे बोला है कि 80 सेंटीमीटर पर इस व्यक्ति का फार पॉइंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो इसका अगर हम लेंस लगाना चाहते हैं तो लेंस कैसा होगा, लेंस ऐसा होगा कि ये व्यक्ति क्या करता है, 80 सेंटीमीटर तक चीजों को देख सकता है, क्लियरली देख सकता है, उसके बियॉन्ड की कोई चीज ये नहीं देख पाएगा। 90 सेंटीमीटर पर कोई चीज रखी होगी तो नहीं देख पाएगा, 100 सेंटीमीटर पर रखी होगी तो नहीं देख पाएगा, या फिर उसके बियॉन्ड भी रखी होगी तो नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति जो है इसकी फार पॉइंट इन्फिनिटी ना हो करके 80 सेंटीमीटर है। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति को कोई ऐसा लेंस लगाया जाए जिसकी मदद से ये व्यक्ति अगर इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसको क्लियरली देख पाए। तो उसको क्लियरली देखने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको ये चाहिए होगा कि सपोज करिए कि आपने कोई ऐसा लेंस चूज किया है और उस लेंस के रेफरेंस में या फिर उसके लेंस के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी हुई है, तो वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी है उसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए कि इस व्यक्ति को क्लियरली दिखे। तो आपको पता है कि इसकी इमेज इसको तभी दिखेगी अगर ऑब्जेक्ट 80 सेंटीमीटर पर रखा है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो ऐसे में इसे कैसे दिखेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, आईज तो अपनी जगह पर रहेंगी, उसे हम कुछ नहीं छेड़छाड़ कर सकते, लेकिन उसके बजाय हम दूसरे लेंसेज यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मायोपिया के केस में हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। और कॉनकेव लेंस क्या करता है, ये एक और इमेज बनाता है, तो दो इमेजेस का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। पहली बार जो इमेज बनती है वो बनती है कॉनकेव लेंस के द्वारा, और दूसरी बार जो इमेज बनती है वो आईज के कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा बनती है रेटिना के ऊपर। तो इस तरीके से दो इमेजेस का फॉर्मेशन होता है, तब जा करके मायोपिक पर्सन जो 80 सेंटीमीटर के आगे कुछ नहीं देख सकते, इनको भी चीजें क्लियरली दिखने लगती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कॉनकेव लेंस ने क्या किया, कॉनकेव लेंस ने ऐसा ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर रखा था उसकी इमेज को उसने 80 सेंटीमीटर पर बना दिया। इमेज जो है वो बना दी 80 सेंटीमीटर पर, तो इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति है उसको लगेगा कि 80 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो उसकी इमेज उनकी रेटिना पर बन जाएगी, तो इससे उनको क्लियर दिखने लगेगा। तो यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट सीखने वाला है वो ये है कि अगर हम मायोपिया का केस लेते हैं तो उसमें हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है और उसकी इमेज कहाँ बन रही है, जो भी आप लोगों को फार पॉइंट गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर वहां पर इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। तो आपको यहाँ पर लेंस फॉर्मूला यूज करना है। लेंस फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, 1/v - 1/u = 1/f, ये लेंस फॉर्मूला है। मैंने आपको कहा था आपको याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है, आपको 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। तो इसलिए आपको ये सारे फॉर्मूलाज जो गिवन थे लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में, वो सारे फॉर्मूलाज आपको याद रहने चाहिए। ऐसा आप कभी ना करें कि आपने चैप्टर पढ़ा और उसके बाद उसके चैप्टर के क्वेश्चंस किए और फिर आप वो फॉर्मूलाज भूल जाएं, इस तरीके से नहीं होगा। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स देने होंगे तो आपको सारी चीजें पूरा एंड तक याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला तो ध्यान रखना ही है, 1/v - 1/u = 1/f। अब यहाँ पर हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो आप लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जहां पर आप डालते हैं यू की जगह पर, स्मॉल यू जो होता है उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ये जो स्मॉल यू है इसकी जगह पे इनफाइनाइट डालेंगे। तो इनफाइनाइट आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखा है और इसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, 80 सेंटीमीटर पर इन फ्रंट ऑफ द आई बननी चाहिए। तभी जा करके व्यक्ति को क्लियर दिखेगा। तो आप जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें आप लिखेंगे 1/v - 1/u = 1/f। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करना शुरू करिए। आप जो यहाँ पर आपको 80 सेंटीमीटर दिया है कि इस व्यक्ति को 80 सेंटीमीटर के आगे कुछ नहीं दिखता, तो 80 सेंटीमीटर पर इमेज की फॉर्मेशन हम करवाएंगे कॉनकेव लेंस की हेल्प से। तो आप जो इमेज की फॉर्मेशन करवा रहे हैं 80 सेंटीमीटर पर, तो इससे आप लोगों को करेक्टिव पावर पता चल जाएगी और उस लेंस की फोकल लेंथ भी आपको पता चल जाएगी। तो आप फॉर्मूलेज में सब पुट करना शुरू करें, उससे पहले V की आप वैल्यू क्या लिखेंगे? आप 80 सेंटीमीटर लिखेंगे या फिर -80 सेंटीमीटर लिखेंगे? तो आपको ध्यान होगा कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें जब इमेज फॉर्मेशन होती है तो जिस साइड ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है उसी साइड इमेज की फॉर्मेशन होती है, और उसमें हम क्या लेते हैं, उसमें हम इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी नेगेटिव लेते हैं। तो ये आप लोगों को याद होगा, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर क्या क्या जो वैल्यूज पुट करेंगे वो किस तरीके से पुट करेंगे, आप स्मॉल यू की जगह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह तो इनफाइनाइट डालेंगे, और वी की जगह स्मॉल वी की जगह इमेज डिस्टेंस की जगह आप -80 सेंटीमीटर डालेंगे, क्योंकि आपको क्या पता लगाना है, यहाँ पर पावर पता लगानी है। तो आपको फॉर्मूले में दिया होता है 1/v - 1/u = 1/f, और 1/f को आपको चेंज नहीं करना है, उसकी जगह आपको बस p लिख देना है, 1/f ही p होता है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/v - 1/u = p। तो डायरेक्टली हम पता लगा रहे हैं यहाँ पर पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। तो ये जो पावर कॉनकेव लेंस की करेक्टिंग लेंस की होगी, इतने की ही कमी है उस व्यक्ति के आंखों में, पावर की इतने की कमी है जितना हम करेक्टिव लेंस लगा रहे हैं। तो ये सारा आपको समझ आ गया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब भी आपको मायोपिया का केस देखना होता है उसमें आपको पावर पता लगानी होती है, तो आपको फॉर्मूला तो 1/v - 1/u = 1/f ये यूज करना होता है, लेकिन यहाँ पर v और u की जगह क्या डालेंगे, आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इन्फिनिटी लेंगे, ऑब्जेक्ट को अज्यूम करेंगे कि वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और इमेज डिस्टेंस आपको गिवन होगी, आपको जो भी फार पॉइंट दिया गया होगा वही आपकी इमेज डिस्टेंस होगी। तो इस तरीके से आपको मायोपिया वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जिसमें आपको पावर पता लगाना होता है। उसके बाद चलो अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 1/v - 1/u = p, इसमें आप v की जगह डालेंगे तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/-80 cm - 1/-∞ = p। तो उसके बाद आप इसे, इतना तो आपको पता होगा कि 1/∞ जो होता है वो जीरो होता है उसका वैल्यू, तो क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू 1/0 होती है, नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। तो आप जब लिखते हैं 1/∞ तो वैल्यू जीरो हो जाती है उसकी, तो इसका मतलब है कि 1/∞ जो आपने 1/u की जगह लिखा है वो जीरो हो गया उसका वैल्यू। तो आपके पास क्या रिमेनिंग रह गया, आपके पास रह गया 1/-80 cm = p, ये आपके पास रिमेनिंग रह गया। उसके बाद आप 80 जो सेंटीमीटर है उसकी जगह उसको आप मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको उसके करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा -100/80 = p। तो यहाँ पर आपने बेसिकली क्या किया है, आपने मीटर्स में कन्वर्ट किया है, मीटर्स में आपको कन्वर्ट करना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको जब भी पावर लिखनी होती है तो आप डायोप्टर्स में लिखते हैं। डायोप्टर्स में पावर लिखने के पहले आपको याद होगा आपको इमेज हमेशा सॉरी डिस्टेंस हमेशा मीटर्स में लिखनी होती है, अगर आप मीटर्स में डिस्टेंस लिखेंगे तभी आप पावर डायोप्टर में लिख सकते हैं, तो इसीलिए आपने यहाँ पर डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट किया है। तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला आपका कैसे हो जाएगा, 100/80 माइनस के साथ में, तो -100/80 जो ये हो जाएगा आपकी पावर की वैल्यू हो जाएगी, तो इक्वल टू p कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे आप, तो सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -1.25 = p पावर। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख भी रहा है कि पावर जो है वो नेगेटिव आई है, नेगेटिव, और वैल्यू क्या है 1.25, -1.25 हमारे कॉनकेव लेंस की पावर हो जाएगी जो हमने यूज किया है उस मायोपिक पर्सन के लिए जिसको 80 सेंटीमीटर के आगे की ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है मेक अ डायग्राम टू शो हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 meter, what is the power of the lens required to correct this defect, assume that the near point of the normal eye is 25 cm। तो पहले पार्ट में आपको बोला गया कि आप डायग्राम से शो करें कि हाइपरमेट्रोपिया को कैसे करेक्ट करते हैं, तो जहां पर हमने हाइपरमेट्रोपिया टॉपिक पढ़ा हुआ था उस जगह पर आप लोगों को डायग्रामेटिक व्यू दिखाया गया था कि कैसे डिफेक्ट होता है, उसे कैसे शो करते हैं, और जो हमारा करेक्शन कर दिया जाता है आईज का, तो उसके बाद इमेज किस तरीके से बनती है, ये सारा आपको डायग्राम से दिखाया था। पेज नंबर 190 पर आप देख सकते हैं, पेज नंबर 190 पर हाइपरमेट्रोपिया दिखाया है, और फिगर 11.3 जो है इसमें आप लोगों को दिखाया है सी पार्ट में कि करेक्शन कैसे की जाती है हाइपरमेट्रोपिक आई की। तो ये आप लोग दिखा सकते हैं, फिगर 11.3 बना सकते हैं, जिससे कि आपका इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा कि करेक्टिव जो मेथड होता है उसको हम डायग्राम से कैसे शो करें एक हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए। तो ये तो डायग्राम वाला काम आपको खुद करना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें आपको बताया पूछा गया है कि ये व्यक्ति जो है इसको 1 मीटर पर ही दिखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ये 1 मीटर पर रखे तभी इसे दिखाई देता है, उससे पास में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखता है तो इस व्यक्ति को नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हम लोगों की हेल्दी जो आई हो और उस केस में जो डिस्टेंस होता है नियर पॉइंट का वो तो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इस व्यक्ति को ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर रखने पर ही दिखता है। 25 सेंटीमीटर पर अगर ये किसी ऑब्जेक्ट को रखे तो इसे नहीं दिखता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि ये हाइपरमेट्रोपिया का केस है, तो इसके लिए हम लोगों को कॉन्वेक्स लेंस यूज करना होगा। अब यहाँ पर जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन नंबर 6 में, कि आपको अगर मायोपिया के लिए देखना हो तो आपको वहां पर अज्यूम करना होता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी है। सिमिलरली अगर आप लोगों को हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन करना है और पावर पता लगाना है तो आपको अज्यूम करना होता है कि ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट जो नॉर्मल नियर पॉइंट है उस पर रखी है, 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखी है और इमेज डिस्टेंस आपको गिवन होगी। इमेज डिस्टेंस आपको वो डिस्टेंस लेनी है जो उस हाइपरमेट्रोपिक आई की नियर पॉइंट है। यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पर आप लोगों को दो दो नियर पॉइंट्स बताई गई हैं। एक नियर पॉइंट तो एक हेल्दी ह्यूमन आई की है जो कि 25 सेंटीमीटर है, और एक नियर पॉइंट उस व्यक्ति की है जिसको एक मिनिमम डिस्टेंस के बियॉन्ड कुछ नहीं दिखता, और ये नियर पॉइंट उस व्यक्ति की डिफेक्टेड नियर पॉइंट है। तो डिफेक्टेड नियर पॉइंट की वैल्यू इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में 1 मीटर दी है। तो आपको जो डिफेक्टेड नियर पॉइंट की वैल्यू दी गई रहेगी आपको उसको इमेज डिस्टेंस की तरह ट्रीट करना है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको लेना है जो एक हेल्दी एक नॉर्मल जो ह्यूमन आई है उसकी जो नियर पॉइंट होती है उसको आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह ट्रीट करना है। और ये बात आपको याद करके रखने की भी जरूरत है, साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी समझा देते हैं। ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसको एक सर्टन डिस्टेंस के बाद कि जो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसको कोई ऑब्जेक्ट एक मिनिमम डिस्टेंस पर रखा हो तभी उसे दिखता है, और वो मिनिमम डिस्टेंस उसकी 25 सेंटीमीटर नहीं है, उसकी कुछ बड़ी है, वो सेंटीमीटर्स में कितना भी डिस्टेंस हो सकता है, जैसे यहाँ पर 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर है, तो इस व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर पर ना दिख करके उसके ज्यादा डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखे तभी दिखता है। तो ऐसे व्यक्ति का मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट हो वो 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर पर रखा हो तो इसे क्लियर दिखेगा। तो हम ऐसा लेंस लगाना चाहते हैं जिससे कि ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर पर रखा हो तो उसकी इमेज बने 100 सेंटीमीटर पर। तो 100 सेंटीमीटर पर अगर इमेज बन जाएगी तो इस व्यक्ति को लगेगा कि ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर पर ही रखा है और उसकी फाइनल इमेज रेटिना पर बन जाएगी। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको समझना है कि यहाँ पर हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा रहे हैं जिससे जिसके रेफरेंस में जिसके जिसके रिस्पेक्ट में अगर कॉन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में इस स्टेटमेंट का मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस से जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो ऑब्जेक्ट को हमने कॉन्वेक्स लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है और इसकी इमेज हम चाहते हैं कि 100 सेंटीमीटर पर बने, और ये 100 सेंटीमीटर जो है ये कहाँ पर होना चाहिए, तो हम मान के चल रहे हैं कि इस लेंस से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज की फॉर्मेशन हो रही है और 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। अब यही डिस्टेंसेस हम आंख की लेंस के लिए भी सेम ही मान के चल जाते हैं, क्योंकि चश्मा जब लगता है व्यक्ति को तो आंख के बहुत ही क्लोज होता है, तो नियरली जितने भी सारे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, करेक्टिव लेंस आप लोग जो ले रहे हैं, यहाँ पर आप कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप लोग जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर ले रहे हैं और इमेज डिस्टेंस आप 100 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंसेस हम आईज के लिए भी सेम ही रख सकते हैं, क्योंकि जो लेंस है वो आईज के बहुत क्लोज होगा, तो इसीलिए जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हम लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले रहे हैं वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम आईज के लिए भी ले सकते हैं। तो हम अगर ऐसा कहें कि कॉन्वेक्स लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आईज से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और हम ये कहें कि लेंस से 100 मीटर की दूरी पर इमेज बन रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आईज से 100 मीटर की दूरी पर इमेज बन रही है, क्योंकि जो हमारा लेंस हम रखेंगे उसकी प्लेसमेंट जब हम करेंगे तो आंख के बहुत क्लोज करेंगे, तो हम लोग नियरली जो भी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आईज के लिए और कॉन्वेक्स लेंस के लिए सेम लेते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने की बारी है, तो आपको फॉर्मूला वही लेंस फॉर्मूला यूज करना है, 1/v - 1/u = 1/f। तो इसे थोड़ा और मॉडिफाई कर देंगे तो आप लिखेंगे 1/v - 1/u = p। अब यहाँ पर v और u की वैल्यू पुट करनी है ताकि हम पावर पता लगाएं। तो आप u की जगह क्या लिखेंगे, u जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, लेंस से भी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है और आई से भी। आई लेंस जो है वो एक कॉन्वेक्स लेंस है, और जो आप करेक्टिव लेंस यूज कर रहे हैं वो भी एक कॉन्वेक्स लेंस ही है। तो आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं, तो इन फ्रंट ऑफ द आई आप रख रहे होंगे, तो इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप नेगेटिव लेंगे, तो आप लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे। अब इमेज डिस्टेंस आप लोगों को कैसे लेनी है, वो नेगेटिव लेनी है या पॉजिटिव लेनी है? इमेज जो बनेगी वो भी तो इन फ्रंट ऑफ द आई बनेगी कॉन्वेक्स लेंस की मदद से, तो इसको भी आप लोगों को नेगेटिव ही लेनी है। तो आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है v = -100 सेंटीमीटर और साथ में आपको u = 25 सेंटीमीटर लिखना है। आपने अभी सेंटीमीटर्स में लिया है क्योंकि सेम में रखना होगा, या तो आपको 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, या फिर आपको जो 1 मीटर है उसको आपको मीटर में रखना है, तो या तो आप सभी को मीटर्स में कन्वर्ट कर लो या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, लेकिन फाइनली तो आपको मीटर में ही कन्वर्ट करना है। मैं इजी कैलकुलेशन हो जाएगा इसीलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि अभी फिलहाल के लिए आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो आप लिखेंगे कि जो इमेज डिस्टेंस है वो है -100 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -25 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में, 1/v - 1/u = 1/f या फिर p। तो 1/v - 1/u = p। अब फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डालते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 1/-100 - 1/-25 = p। तो ये हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके सारी जो डिस्टेंसेज है वो डाल दी। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 1/25 - 1/100। 25 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे 4/100 - 1/100। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 3/100 सेंटीमीटर = p। तो यहाँ पर आपने लिखा है 3/100 सेंटीमीटर = p, तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप क्या लिखेंगे इस बार 300/100, इस तरीके से हो जाएगा, और आप लिखेंगे 300/100 = p। तो अब कट कर दो, जो जीरोज है उनको कैंसिल आउट कर दो, तो आप लिखोगे 3 = p, तो पावर की वैल्यू आ जाएगी 3 डायोप्टर। तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना होता है, पावर जब पता लगाना होता है तो वो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। न्यूमेरिकल्स आपको दिए रह सकते हैं और यही कॉन्सेप्ट आपको 12th में भी यूज करना है, तो आप चाहें तो कॉन्सेप्ट याद रखें तो बहुत अच्छा होगा और इसको आपको बहुत यूजफुल होगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और उसमें पूछा है व्हाई इज द नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। तो देखो, अगर 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो आई लेंस है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर पाती है। एक नॉर्मल आई जो है, एक हेल्दी आई जो है, वो एक मिनिमम फोकल लेंथ कर सकती है और एक मैक्सिमम लिमिटेड फोकल लेंथ कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकती है ना ही घटा सकती है। तो एक हेल्दी ह्यूमन आई कितना फोकल लेंथ ला सकती है एडजस्टमेंट करके? फोकल लेंथ में एडजस्टमेंट तो कर सकती है ह्यूमन आई, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज होता है, उससे ना कम कर सकती है ना ज्यादा कर सकती है। जैसे ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही ज्यादा बढ़ा ले फोकल लेंथ, तो उस ये भी पॉसिबल नहीं है, या फिर बहुत ही कम कर दे फोकल लेंथ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। थोड़ी सी एक रेंज होती है, एक पर्टिकुलर रेंज होती है, तो उस रेंज के बियॉन्ड फोकल लेंथ आप लोगों को नहीं मिल सकती है एक हेल्दी ह्यूमन आई से। तो इसी वजह से अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखा हो तो आईज उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाती है, अकोमोडेशन की पावर तो है ह्यूमन आई के पास, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम रख दें तो उसको वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाती है, उसकी इमेज क्लियर नहीं बनती है। तो इसी वजह से हम लोग अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी क्लियर इमेज नहीं देख पाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। तो यहाँ पर देखो, आपकी जो आईज हैं वो बेसिकली क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। तो जो चीजें आपको कॉन्वेक्स लेंस में देखने को मिलती थी वही चीजें आपको आई के लेंस में भी दिखेंगी। तो मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो दूर 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 चला जाए और मान लो कि वो इन्फिनिटी पर रखा है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, फोकस पॉइंट पे बनती है, छोटे साइज की बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। तो यहाँ पर फोकस पॉइंट जो होता है वो रेटिना होता है। तो अगर बहुत ज्यादा दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज रेटिना पर बनेगी, और हमेशा इमेज जो है वो रेटिना पर ही बनेगी, क्योंकि हमारी आईज जो है वो अपना फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी रखती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है आईज के पास। तो यहाँ पर आईज पर जो इमेज बनेगी रेटिना पर वो वहां पर फोकस हो गई, वही उसका फोकस पॉइंट होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जिस तरीके से हम नॉर्मल एक किसी ग्लास के कॉन्वेक्स लेंस में देखते हैं कि फोकस पॉइंट पर बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है, छोटे साइज की बनती है, सिमिलरली हम लोग अगर कोई दूर की बहुत दूर की चीजें देखते हैं तो हमें वो ऑब्जेक्ट्स छोटे छोटे नजर आते हैं। तो यही कारण है कि हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो छोटे छोटे नजर आते हैं, क्योंकि जैसे एक ग्लास के कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन होती है, डिमिनिश्ड होती है अगर कोई इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हो। तो सिमिलर केस होता है आईज के साथ भी, आईज के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो तो उसकी इमेज जो बनेगी वो डिमिनिश्ड बनती है। इसी वजह से हमें ऑब्जेक्ट जो बहुत दूरी पर रखे हो वो छोटे नजर आते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट को करीब लाते जाएंगे तो उसकी इमेज थोड़े बड़े साइज की दिखती है, जैसे हम लोगों ने एक कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी देखा है। जैसे जैसे आप पास लाते हैं, कर्वेचर पे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, तो वैसे आपको उस केस में इमेज डिस्टेंस, इमेज की जो आपको साइज मिलेगी वो सेम साइज की मिलेगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जितनी साइज है उतनी ही साइज की इमेज मिलेगी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखा हो। तो इस तरीके से सारी केसेस आप लोगों को आईज के केस में, हेल्दी ह्यूमन आईज के केस में भी देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा भी हुआ है, यहाँ पर हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्स जो है वो बेसिकली क्या है, लाइट का सोर्स है, पॉइंट साइज के लाइट के सोर्स है। पॉइंट साइज क्यों, पॉइंट साइज इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं तो हमें ये नियरली डॉट के जैसे दिखते हैं। तो ये डॉट के जैसे हमें दिखते हैं क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है अर्थ से। अब आगे कि ये जो पॉइंट साइज का लाइट का सोर्स है, इससे लाइट आती है, धरती पर पड़ती है, हमारी आंखों में पड़ती है, उसके पहले इसे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करना होता है। एटमॉस्फेयर जो है वो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम नहीं है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलग अलग मीडियम से मिल करके बना है, और ग्रेजुअली जैसे जैसे आप धरती के करीब आते जाएंगे वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस तरीके का हमारा एटमॉस्फेयर है कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं रहती है। तो इसी वजह से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं होती है तो लाइट जब ट्रैवल कर रहा होगा, स्टार्स से धरती की तरफ जब आ रहा होगा, तो उसको अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करना होगा। कभी तो वो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में ट्रैवल कर रहा होगा, फिर वो ज्यादा वाले में आ जाएगा क्योंकि वो नीचे आ रहा है, और नीचे नीचे जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है। तो इसी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज होने की वजह से लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, अपने पाथ से वो भटक जाती है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो स्टार्स है जहां पर वो एक्चुअली है उससे अलग पोजीशन पर हमें अपीयर होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी तो आपको वो ट्विंकल करते हुए भी दिखते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर भी जब लाइट ट्रैवल कर रही है वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से ट्रैवल कर रही है, तो उसमें रिफ्रैक्शन हो रही है। तो आप लोगों को याद होगा इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग देखते हैं अगर आग रखी हो, कहीं पर आग जल रही हो, तो उसके जस्ट पास वाली जो एयर है अगर उसके थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को देखें तो भले ही वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रखा है लेकिन उसकी हम लोगों को मोशन में वो दिखती है ऑब्जेक्ट। तो ये भी इसलिए क्योंकि लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट से अलग अलग मीडियम से ट्रैवल करके हमारी आंखों में पड़ रही है, तो इसकी वजह से एक फ्लिकरिंग इफेक्ट दिखता है। तो सेम फ्लिकरिंग इफेक्ट हम लोगों को स्टार्स में भी दिखता है, जब स्टार्स से लाइट बहुत अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से क्रॉस करती हुई हमारी आईज में पड़ती है, तो कभी तो फेंट दिखता है स्टार, कभी ब्राइट दिखता है। तो ये फ्लिकरिंग इफेक्ट जो है ये इसी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इसी वजह से हमें स्टार्स जो है वो अल्टीमेटली ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स इसलिए नहीं ट्विंकल करते हैं क्योंकि पहली बात तो ये कि प्लैनेट्स और अर्थ के बीच की जो दूरी है वो कम है एज कम्पेयर टू दैट दूरी जो अर्थ और स्टार के बीच में है. अर्थ और स्टार के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है, इसीलिए हमें स्टार्स पॉइंट साइज के डॉट के जैसे दिखते हैं, लेकिन प्लैनेट्स की और अर्थ के बीच की दूरी थोड़ी कम है, जिसकी वजह से हमें प्लैनेट्स डॉट की तरह नहीं दिख सकते हैं, वो हमें डिस्क की तरह दिखते हैं. और अगर आप लोग प्लैनेट्स को टेलीस्कोप से देखें तब तो आपको क्लियर प्लैनेट नजर आ जाएगा, स्फीयर नजर आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या है कि प्लैनेट जो है वो हमें डॉट के जैसा तो नहीं दिखता है, जिससे की वजह से अगर हम प्लैनेट को मान लें कि वो लाइट का सोर्स है तो उसकी वजह से वो हमें पॉइंट साइज का तो दिखेगा नहीं, डॉट के जैसा तो दिखेगा नहीं. उसके ऊपर अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग लाइट के सोर्स, हमें ऐसा लगेगा कि जैसे एक डिस्क है तो उस डिस्क के लेफ्ट में अगर कोई लाइट का सोर्स है उसी डिस्क के ऊपर प्लेस्ड है. मान लो कि अगर वो लाइट का सोर्स है, प्लैनेट जो है उस पर भी लाइट है, वैसे तो प्लैनेट्स की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, स्टार्स से उसके ऊपर लाइट पड़ती है, तो फिर भी हम मान लेते हैं कि प्लैनेट जो है उसके ऊपर लाइट है, मौजूद है. तो उसके अलग अलग, जैसे उसका एक सर्कुलर आउटलाइन होगा जो आपको नजर आएगा, तो उसके सर्कुलर आउटलाइन पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर जो है वो लाइट का सोर्स मान लो कि है. तो अब मान लो लेफ्ट साइड में एक लाइट का सोर्स है, उसी सर्कुलर आउटलाइन के ऊपर मौजूद एक लेफ्ट जो साइड है वहां पर लाइट का सोर्स है, तो उससे रोशनी आ रही है. अब उसी के बिल्कुल सामने एक राइट साइड में भी लाइट का सोर्स होगा, लेफ्ट साइड में लाइट का सोर्स है, राइट साइड में भी लाइट का सोर्स है, इन दोनों से जो लाइट्स आ रही हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, तो हमें कोई वेरिएशन नजर ही नहीं आएगा, तो हमें प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नहीं नजर आएंगे. तो प्लैनेट्स बेसिकली बड़े साइज के होते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर हम लोगों को ऐसा लगता है कि स्टार्स से जो इनके ऊपर लाइट पड़ रही है वो अलग अलग लाइट जो है उसको कैंसिल करने के लिए उसके ऑपोजिट साइड में दूसरी साइड से भी लाइट पड़ रही होती है, जिसकी वजह से वेरिएशन कोई नजर नहीं आता है लाइट का और हमें प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा है व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग. सन जो है वो लाल लाल सा क्यों दिखता है अर्ली इन द मॉर्निंग. तो इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि सन जब अर्ली इन द मॉर्निंग, वो जब उगता है या फिर जब वो सेट करता है, या तो वो डूब रहा हो या फिर वो उग रहा हो, तो वो हमेशा हॉरिजॉन से करता है, और हॉरिजॉन से जब सन ऊपर आ रहा होता है तो वो उस टाइम पे सन राइज करता है, हॉरिजॉन से नीचे जाता है तो सन सेट करता है. तो अगर हॉरिजॉन के पास का ही सारा कुछ ये जो फिनोमिना है वो हो रहा है, हॉरिजॉन से जब कोई लाइट आती है सन से, तो उस केस में उसे ज्यादा देर तक एटमॉस्फेयर में रहना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है उससे जो भी लाइट्स आ रही हैं वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा देर तक रहती हैं, तो उसका मतलब वो ज्यादा स्कैटर होंगी. स्कैटर होंगी इसका मतलब ये है कि जो भी उससे लाइट आ रही होगी उसमें से जो ब्लू कंपोनेंट होगा वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है. तो पार्टिकल्स से उस वक्त, जिस वक्त एटमॉस्फेयर में लाइट ज्यादा देर तक रह रही है, तो वो ज्यादा स्कैटर हो रही है, ब्लू लाइट को बहुत ही ज्यादा स्कैटर किया जा रहा है. तो इसमें क्या होगा कि ब्लू लाइट जो है वो तो अब रास्ते में रहेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो स्कैटर कर दी गई है, जिस रास्ते से वो आ रही थी उस रास्ते से उसको भटका दिया गया है, वो अपना रास्ता चेंज कर चुकी है. लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि ऑरेंज लाइट और रेड लाइट जो है वो ज्यादा स्कैटर नहीं होती, तो ज्यादा देर तक यहाँ पर लाइट रह रही है एटमॉस्फेयर में, उसके बावजूद भी वो ब्लू लाइट को तो स्कैटर कर रही है लेकिन ऑरेंज और रेड लाइट को वो ज्यादा स्कैटर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ऑरेंज और रेड लाइट डायरेक्टली हमारी आंखों में पड़ते हैं और हमें सूरज रेड अपीयर होता है और उसके आसपास की स्काई भी रेड अपीयर होती है सनराइज या फिर सनसेट के टाइम पर. तो सारा हॉरिजॉन वाली बात है यहाँ पर, हॉरिजॉन से जब रोशनी आ रही होगी तो उस वक्त वो ज्यादा देर तक एटमॉस्फेयर में रहेगी, तो ज्यादा स्कैटरिंग होगी ब्लू लाइट की, तो हमें ब्लू नजर नहीं आएगा, हमें डायरेक्टली रेड और ऑरेंज जो हमारी आंखों में वेव्स पड़ रही हैं वही हमें नजर आ जाता है, तो इसीलिए हमें रेड नजर आता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट. तो हमने पढ़ा हुआ है ब्लू जो हमें नजर आता है वो इसलिए नहीं क्योंकि आसमान हकीकत में ब्लू है, हमें ब्लू इसलिए नजर आता है क्योंकि यहाँ पर ब्लू ही लाइट स्कैटर होती है, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं बहुत सारे तो वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर देते हैं, करते तो वो सबसे ज्यादा स्कैटर वायलेट को है लेकिन हमें ब्लू नजर आती है क्योंकि हमारी आईज सेंसिटिव हैं, ब्लू लाइट को देख पाती हैं, डिटेक्ट कर लेती हैं, वायलेट को नहीं कर पाती हैं. तो यहाँ पर ब्लू लाइट को स्कैटर किया जा रहा है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है वो कर रहे हैं स्कैटर, इसीलिए हमें ब्लू स्काई नजर आता है. और जब एस्ट्रोनॉट्स ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहां पर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पर एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है तो वो स्कैटर नहीं करेंगे लाइट को, तो स्कैटर नहीं करेंगे तो एस्ट्रोनॉट को कोई ब्लू कलर की स्काई नजर नहीं आएगी. तो यही कारण है कि एस्ट्रोनॉट्स को डार्क नजर आती है स्काई, उन्हें ब्लू नजर नहीं आती है. तो आपको ये सारा समझ आ गया. उसके बाद अब ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, तो आपको इस चैप्टर के ये क्वेश्चन सारे फिर से एक बार खुद से ट्राई करने हैं, और पावर वाले क्वेश्चन तो आपको ट्राई करने ही है. ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद आप इस चैप्टर को दोबारा से खुद से पूरा पढ़ लीजिए, आप रिवाइज कर लीजिए। आपको कोई डाउट्स हो तो आप अपने टीचर से जरूर पूछिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।